नमस्कार भारत, तारीख 11 दिसंबर, दिन मंगलवार, मैं हूँ मानसी दास। आज होगा पांच राज्यों के भविष्य का फैसला, भाजपा कांग्रेस दोनों को है जीत का भरोसा।
घर घर जाओ मेरी माताओं बहनों, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में फिर से लेकर आ जाओ भाइयों।
ये पूरा राजस्थान में साबित हो गया है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में साबित हो गया है कांग्रेस पार्टी की आंधी आने वाली है।
आज ही से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार के सामने क्या है चुनौतियाँ?
टकराव बढ़ने वाला है, कितने बिल्स पास होंगे वो अलग चीज है, पर पॉलिटिक्स शार्पन होगा, इंटेंसिफाई होगा।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत के पांच प्रांतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और उम्मीद है कि सुबह 9 बजे पहले रुझान मिलने लगेंगे। भारतीय मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस की बढ़त बताई गई है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला बताया गया है। फ्रांस में महंगाई को लेकर कई सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के जवाब में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने और कई तरह की टैक्स छूटें देने का वादा किया है। मैक्रों ने टीवी पर प्रसारित अपने संदेश में यह भी कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में एक बार बोनस देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार खर्चों में कटौती भी करेगी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा, आपात सामाजिक और आर्थिक स्थिति के जवाब में हम मजबूत कदम उठाएंगे, टैक्सों में अधिक कटौती करेंगे, अपने खर्च को नियंत्रण में रखेंगे, लेकिन हम यू टर्न नहीं लेंगे। हम ऐसा फ्रांस चाहते हैं जहां लोग अपनी कमाई से सम्मान से रह सकें, और इस दिशा में हम कुछ धीमे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर तुरंत और ठोस हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मैं सरकार और संसद से हर जरूरी कदम उठाने का आह्वान करता हूं ताकि लोग अगले साल की शुरुआत से अपने वेतन को के साथ अच्छा जीवन जी सकें। 2019 में न्यूनतम वेतन पर काम करने वालों के वेतन में प्रति माह 100 यूरो की बढ़ोतरी होगी और नियोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। वहीं फ्रांस सरकार के एक जूनियर मंत्री के मुताबिक इन नए कदमों पर करीब 10 अरब डॉलर खर्च होंगे। वहीं प्रदर्शनों में शामिल कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के ये नए कदम पर्याप्त नहीं हैं और वो फिर सड़कों पर लौट सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक पर कब्जा करने वाले बंदूकधारियों से कहा है कि वो ये जगह छोड़ दें। अपने गरीब इलाके के लिए बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग करने वाले बंदूकधारियों ने लीबिया के दक्षिणी फैजान क्षेत्र के शरारा तेल संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के मिशन का कहना है कि वह इन लोगों की परेशानियों को समझता है, लेकिन संयंत्र को बंद करने से रोजाना 3 करोड़ डॉलर तक का नुकसान होगा। संयुक्त राष्ट्र ने लीबियाई प्रशासन से इस क्षेत्र में सेवाएं सुधारने की मांग भी की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क ने इस सप्ताह ब्राजील्स में होने वाले यूरोपीय सम्मेलन में ब्रेक्जिट पर चर्चा के लिए एक सत्र और जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप ब्रिटेन की मदद कैसे की जाए इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ब्रेक्जिट समझौते पर अब दोबारा चर्चा नहीं होगी। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने संसद में ब्रेक्जिट के मुद्दे पर आज होने वाले मतदान को टाल दिया है। इसमें उनकी हार तय मानी जा रही थी। डोनाल्ड टुस्क ने ब्रिटानी संसद में टेरिजा मे के भाषण के बाद ये बयान दिया है। अमेरिका की टायर बनाने वाली कंपनी गुडियर वेनेजुएला में अपना उत्पादन बंद करने जा रही है। इसे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वेनेजुएला में अपना कारोबार समेट चुकी हैं। कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस फैसले के लिए आर्थिक हालातों और अमरीकी प्रतिबंधों को जिम्मेदार बताया है। पेरू में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर हुए जनमत संग्रह में 80% से अधिक लोगों ने राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा के सुधारों के समर्थन में मतदान किया है। रविवार को हुए जनमत संग्रह को राष्ट्रपति विस्कारा की स्पष्ट जीत माना जा रहा है। इराक की राजधानी बगदाद के अति सुरक्षित सरकारी कार्यालयों और विदेशी दूतावासों वाले इलाके ग्रीन जोन के कुछ हिस्सों को पहली बार आम लोगों के लिए खोला गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत के उन राज्यों से जहां आज विधानसभा चुनावों में मतों की गिनती होनी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में आज चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। राजस्थान में 200 सीट वाली विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए, छत्तीसगढ़ में 90, मिजोरम में 40 और तेलंगाना में 119 सीटों पर आज नतीजे आएंगे। मतदान से पहले की हलचल जानने के लिए कार्यक्रम में सीधे चलेंगे बीबीसी संवाददाताओं के पास जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भाजपा की साख दांव पर है, जहां उसके लिए संघर्ष सत्ता में लौटने का है। ताजा जानकारी के लिए सबसे पहले चलते हैं राजस्थान बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, सबसे पहले हमें ये बताएं कि मतदान से पहले सुरक्षा की कैसी तैयारियां दिख रही हैं आपको? माफ कीजिएगा, नितिन के साथ जो है हमारी लाइन कट गई है, इसीलिए हम अब सीधे चलेंगे विनीत खरे के पास जो फिलहाल मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हैं। विनीत, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं?
मैं सुन पा रहा हूं मानसी आपको।
विनीत, बताया ये जा रहा है कि भोपाल में, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में फिलहाल सत्ता को बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है?
बहुत बड़ी चुनौती है मानसी। मेरे पास अभी स्थानीय अखबार हैं, जैसे कि पीपल्स समाचार है, शिवराज लगाएंगे जीत का चौका या होगा बदलाव, चंद घंटे और इंतजार। कलम भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दफ्तर में थे और दोनों ही तरफ के नेता बिल्कुल कॉन्फिडेंस जता रहे हैं इस बात करने पर कि विधि की सरकार बनेगी। लेकिन मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में सरकारें बदलती रहती हैं, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है जहां पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार है। टर्म से शिवराज सिंह चौहान है कि अगर यहाँ बदलाव होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब से एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, खासकर तब से जो बेचैनी है खासकर भाजपा कैंप में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक नेक टू नेक फाइट बताया गया है और जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हैं उसमें उनमें जो भाजपा के नेता हैं वो फिर कारण गिना रहे हैं कि अगर हम हारे तो शायद ये कारण होगा, शायद शिवराज सिंह चौहान की जो जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार होंगी, किसान जो नाराज हैं, जो स्टेट एम्प्लॉयज हैं उनमें एक तरह की नाराजगी है, वो शायद कारण हो सकते हैं। उनका एक आरोप है कि एक तरह की कोटरी सी बन गई है शिवराज सिंह चौहान की, जो एक तरह से बैरियर का काम करती है, आम लोग पहुंच नहीं पाते, ऐसे कारण भी बताते हैं। तो ये सब कारण वो गिना रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान हारे तो ये कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारी बातचीत हुई, रघुनंदन शर्मा है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कल हमारी बात हुई तो पूर्व में जो बयान दिए गए शिवराज सिंह चौहान के उसको भी एक तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था।
पार्टी कमजोर होती है तो हमारी चिंता का विषय बनता है, हमें पीड़ा होती है और कारणों की खोज होती है। तो उसमें से जो काम मुझे पार्टी ने दिया था, दृष्टिपत्र में मुझे कहा गया था कि सभी समाजों के प्रमुखों से मिलिए, संतों से, पुजारियों से, इन लोगों से मिलिए, तो मैंने सबसे संपर्क किया दो बार और उसमें से अधिसंख्य लोगों ने ये बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो कुछ कहा था वो आज तक हमें चुभ रहा है, हमारे स्वाभिमान को उन्होंने चुनौती दी है और माई के लाल जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने हमारे को अपमानित किया है, यह चोट भीतर तक छू गई है। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं एकाध परसेंट का मामला हुआ तो 1% तो ये माई का लाल प्रभावित कर ही रहा है और इसके कारण 10-15 सीटें प्रभावित हो सकती है। दुर्भाग्य से हमारा चौथी बार बहुमत नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ी हानि होगी। भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री को है और यदि कहीं पिछड़ जाते हैं तो स्वयं उनको पिछड़ने का दायित्व तो भी लेना ही चाहिए।
विनीत, ये बताएं कि 2019 के चुनावों में अगर मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की हार होती है तो 2019 के लिए किस तरह का संकेत होगा भाजपा के लिए?
देखिए, 29 सीटें हैं मानसी यहाँ से, तो मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर इस लिहाज से कि यहाँ पर भाजपा लंबे समय से रही है, तो अगर यहाँ कोई शिफ्ट हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी हालांकि जिम्मेदार होगी, लंबे समय से भाजपा सरकार है, लेकिन उसका इंडिकेशन ये लिया जाएगा कि क्या लोगों की सोच 2019 में भाजपा को लेकर बदल सकती है। लेकिन ये भी कहना होगा कि ये स्टेट इलेक्शंस हैं और शायद वोट जो नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देखकर वोट होते हैं, तो शायद अलग सोच से भी वोट देंगे, ये ऐसे एनालिस्ट कहेंगे।
जी धन्यवाद विनीत खरे। और अब हम चलते हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास राजस्थान। नितिन, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं?
जी मानसी, और बहुत माफी चाहूंगा कि लाइन एकदम से कट गई थी। तापमान यहाँ का बाहर का 13 डिग्री है और दिन में खासा गर्म होने वाला है, क्योंकि जैसे नतीजे आएंगे वैसे ही।
जी बताएं, राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है।
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा एक तरह से अंतरकलह की वजह भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी तमाम कांग्रेसी नेताओं से लगातार बात होती रही है, पहले भी और अभी भी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसी बात से आप हमारे श्रोता जो है वो समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कल दोपहर में हम दो बार कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय गए। जयपुर में स्थित है, बड़ी बेहतरीन खूबसूरत सी बिल्डिंग है, लेकिन उसके अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बड़ी LCD स्क्रीन लगाने की तैयारी हो रही थी, पता लगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पिछले 4 दिनों से मतदान के बाद से दिल्ली में मौजूद है। तो यानी कि कांग्रेस में राजस्थान में क्या होना है अगर कांग्रेस जीतती है, तो मेरे ख्याल से फैसला हाईकमान यानी राहुल गांधी और दल जनपद से ही होना है।
जी, और चुनाव से पहले वहाँ किस तरह की तैयारियां आपको दिख रही हैं? सड़कों पर क्या माहौल है, लोगों का रुझान किस तरफ का है?
लोगों में बहुत दिलचस्पी है मानसी इन चुनावों को लेकर, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात से अवेयर है, उनको ये पता है कि राजस्थान का एक इतिहास रहा है कम से कम पिछले 20 सालों में, कि वो जो मौजूदा सरकार होती है उसको सत्ता से बाहर जाने का के लिए वोट देते हैं। तो लोगों में इस बात का सेंस है, लोगों को इस बात का एहसास है, लेकिन लोग इस बार 2-3 मुद्दे हैं जिनके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। वो उन स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, तुलना करते हैं कि बीजेपी ने किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और खासतौर से महिलाओं के लिए कौन कौन सी स्कीमें की और कांग्रेस की सरकारों ने कैसे की। तो वो एक तुलनात्मक तरीके से, प्रिज्म से जो है इलेक्शन को देखा जा रहा है। और जो एक आखिरी बात जरूर बताना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने इन चुनावों में आखिरी के 10 दिनों में जो कैंपेन था उसमें जान लगा दी थी। मोदी दिन में 5-5 रैली कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ अलवर और मेवात ऐसे सेंसिटिव इलाकों में कैंपेन कर रहे थे, तो बहुत से लोग इस बात को लेकर भी अभी सशंकित है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा।
जी शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव। और अब आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमारे साथ हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी जो फिलहाल रायपुर में हैं। सलमान, बताएं कि नई हाईटेक राजधानी तो सरकार ने बना ली, लेकिन क्या ये सड़क सत्ता तक जाती है?
अब देखिए कि जो सड़क बनाई है वो उनको सत्ता तक दोबारा वापस ले जाएगी कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी 3 बार से सरकार में है और इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 विधानसभा के चुनाव में पहली बार अगर मुकाबला बहुत कड़ा देखने को मिला तो इसी बार मिला है। और ऐसा नहीं है कि पिछली बार भी बहुत जो है इजी केक वॉक था बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 0.79 यानी 0.79% का ही डिफरेंस था कांग्रेस और बीजेपी में। यहाँ ये रहा है कि क्योंकि क्षेत्रीय दल इतने मजबूत नहीं रहे तो आमने सामने की लड़ाई हमेशा रही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, टक्कर रही। लेकिन इस बार थोड़ा सा गठजोड़ जो हुआ, अजीत जोगी कांग्रेस छोड़कर गए, मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन किया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया, तो ये जो तीसरा फ्रंट बनाकर जो चुनाव उन्होंने लड़ा है और वो दावा भी कर रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में वो रहेंगे, सीटें अच्छी आएंगी जिधर भी आए, लेकिन क्या है कि बहुत जीतने का मार्जिन बहुत कम होगा और कहीं इनका दावा सच ना हो जाए कि किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आए, क्योंकि 2-3 सीट 90 सीटें हैं कुल मिलाकर विधानसभा में, और 90 सीटों में आप समझ सकते हैं कि एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक एक विधायक का मत जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब यह है कि ये किंग मेकर की भूमिका में रह पाएंगे या कांग्रेस अपने बूते बना लेगी जैसे वो दावा कर रही है, हालांकि दोनों खेमों में यह है कि दोनों दावा कर रहे हैं कि हम बना लेंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है डगर पनघट की।
जी सलमान जी, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों की सीटें भी बेहद अहम होती हैं, इन इलाकों में आपको किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था या लोगों में किस तरह का रवैया दिख रहा है?
देखिए तो ये इलाके बिल्कुल बाकी के छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलग तरह की यहाँ पे पॉलिटिक्स है, अलग तरह के इलाके हैं और वोटिंग पैटर्न भी बिल्कुल अलग है। जंगली इलाकों में अगर पिछले विधानसभा के पहले की बात की जाए 2008 की, तो 12 सीटें जो बस्तर की हैं उसमें ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादातर सीटें आई। लेकिन 2013 की जो चुनाव हुए उसमें एक वजह भी थी कि पूरी लीडरशिप साफ हो गई थी कांग्रेस की, नक्सलियों ने सबको मार दिया था, जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो मारे गए, महेंद्र कर्मा मारे गए, तो 12 में से 8 सीटें तो फिर कांग्रेस ने जीती है। और कांग्रेस के पास ये चुनौती है कि बस्तर जैसे इलाके में 8 सीटें वो बचा पाए या नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैक्सिमम पर है ये वहां पर।
जी, ताजा जानकारी के लिए शुक्रिया सलमान रवि। आगे बढ़ते हैं। आज संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। माना जा रहा है कि आम चुनावों से पहले अहम कानून पास कराने के लिए सरकार के पास ये आखिरी मौका होगा। सबकी निगाहें ट्रिपल तलाक बिल पर भी होंगी। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से संपर्क किया और पूछा कि सरकार और विपक्ष दोनों के लिए संसद का शीतकालीन सत्र कितना अहम होगा।
देखिए, दोनों के लिए बहुत अहम है ये सेशन। टाइमिंग जो है इसकी बहुत क्रूशियल है। रिजल्ट्स आ रहे हैं 5 प्रदेशों के, जो कि एक टेम्पो सेट करेंगे 2019 के चुनाव के लिए। कितने प्रदेश में कौन सरकार बनाता है, क्या बीजेपी 2 ले जाएगी 3 में से हिंदी हार्टलैंड के, क्या कांग्रेस ले जाएगी 3 में से 3, बहुत चीजें उस पर निर्भर करेंगी। और पूरा सेशन का जो माहौल होगा वो उससे सेट होगा। आरबीआई के गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है और गहमा गहमी बढ़ेगी और भाजपा भी कई चीजें लाने वाली है। वैसे तो 21 विधेयक हैं जिसपे पार्लियामेंट को अटेंशन देनी है, लेकिन ट्रिपल तलाक का बिल है और बीजेपी सांसद मनोज सिन्हा ने जो कहा है कि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल लाएंगे कि मंदिर वहीं बनना चाहिए और सरकार को एक कानून पास करके बनाना चाहिए, कोर्ट की इंतजार नहीं करनी चाहिए। दोनों चीजें फिर से एक माहौल क्रिएट करेंगी देश में मंदिर के लिए और हिंदू कंसोलिडेशन के लिए, और इससे लगता है कि सरकार की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो कम हो रही है। बहुत बड़ी चुनौतियां उसके सामने आ रही हैं, चाहे किसानों को लेके हो, नौजवानों को लेके हो, दलितों को लेके हो, अल्पसंख्यकों को लेके हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। अब ऑपोजिशन के लिए भी उनको इकट्ठा करना है, एक महागठबंधन बनाना है, उस पर भी पहल होगी और बहुत निर्भर करेगा कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। और अगले दिनों में पॉलिटिकल गर्मा गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, टकराव बढ़ने वाला है। कितने बिल्स पास होंगे वो अलग चीज है, पर पॉलिटिक्स शार्पन होगा, इंटेंसिफाई होगा।
क्या आपको लगता है कि कांग्रेस दोबारा अपनी रफाल पर, जो सरकार को घेरने की रणनीति है, उसी पर बनी रहेगी या कुछ और नए मुद्दे इस बार उसकी झोली में होंगे?
देखिए, रफाल पर वो करते रहेंगे, जेपीसी की मांग जरूर करेंगे, बाहर पार्लियामेंट में हल्ला भी करेंगे। रेजोनेट होता है ना इश्यू लोग पॉपुलर लेवल पे, लोगों के बीच में, वो इन इलेक्शन में नहीं दिखा। किसानों का मुद्दा दिखा, नोटबंदी की से बहुत जो तकलीफें हुई हैं वो बहुत लोगों ने उसको एक्सप्रेशन दिया, और नौजवान तबका जो नौकरियों को लेके बहुत बेचैन है, वो चीजें बहुत सामने आई हैं। हो सकता है अब मोदी सरकार को लेके कांग्रेस और भी कोशिश करे घेरने की, उसको छोड़ेगी नहीं, वो तो क्लियर चीज है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, उनसे बात कर रहे थे कुलदीप मिश्र। केंद्र सरकार से मतभेद की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने कल शाम इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए उनके योगदान को सराहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे देश की संस्थाओं पर हमला करार दिया है। सुनिए बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र की रिपोर्ट।
उर्जित पटेल ने रघुराम राजन के बाद 4 सितंबर 2016 को आरबीआई के गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल अगस्त 2019 तक था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पहले ही इस्तीफा दे दिया। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी बयान में उर्जित पटेल की ओर से कहा गया है,
निजी वजहों से मैंने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पिछले कई वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न पदों पर रहना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मैं इस मौके पर अपने सहयोगियों और रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ।
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले महीने अपने भाषण में खुलकर रिजर्व बैंक की स्वायत्तता की वकालत की थी और माना था कि नकदी की उपलब्धता, क्रेडिट फ्लो और सरकार के नियंत्रण को लेकर मोदी सरकार और रिजर्व बैंक में मतभेद हैं। तभी से केंद्र सरकार और गवर्नर उर्जित पटेल के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही थीं। ऐसी भी खबरें थीं कि वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक कानून की धारा 7 को लागू करने पर विचार कर रहा था। ये धारा सरकार को जनहित के मुद्दों पर रिजर्व बैंक गवर्नर को निर्देश देने का अधिकार देती है। इसे रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में हस्तक्षेप माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उर्जित पटेल की प्रशंसा करते हुए ट्विटर पर लिखा,
डॉक्टर उर्जित पटेल बेहद पेशेवर हैं और उनकी निष्ठा निष्कलंक है, हम उनकी बहुत कमी महसूस करेंगे।
लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सोमवार को नई दिल्ली में विपक्षी दलों की साझा बैठक थी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बात उर्जित पटेल के इस्तीफे से ही शुरू की।
हमारी बैठक बहुत अच्छी रही और बैठक के बीच में हमें बताया गया कि संघ और भाजपा का एजेंडा बढ़ रहा है और RBI के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो मौजूदा सरकार के लिए अब और काम नहीं कर सकते। बैठक में इस पर सहमति थी कि हमें हमारी संस्थाओं पर BJP के हमलों को रोकना है। हमें CBI, RBI और चुनाव आयोग समेत सभी संस्थाओं और संविधान पर हमले को रोकना है।
इस सरकार में ये दूसरी बार हुआ है जब RBI प्रमुख ने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया। आर्थिक मामलों के पत्रकार प्रियरंजन दास मानते हैं,
एक बड़ा संस्था था प्लानिंग कमीशन, उसको हटाया गया तो उसको नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट करने में सरकार को टाइम लगी। उसके बाद जैसे कि प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो होता है उसको बनाने में करीब करीब 3 साल लग गया। और पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर राजन, उनको भी कुछ अनहैपी सिचुएशन में जाना पड़ा। पनगरिया साहब भी निकल गए, सरकार की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने भी छोड़ दिया। इस सरकार में इकोनॉमिक मैनेजमेंट का टैलेंट का डेफिसिट है, ये शुरू से दिख रहा है।
प्रियरंजन दास ये भी कहते हैं कि उर्जित पटेल का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना दर्शाता है कि उन्हें जाना पड़ा है। लेकिन संसद का शीत सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हुए इस बड़े इस्तीफे ने विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने का एक अस्त्र तो दे ही दिया है। कुलदीप मिश्र, BBC दिल्ली।
उर्जित पटेल के इस्तीफे की टाइमिंग क्यों खास है और रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस्तीफे से कहां और क्या असर हो सकता है, ये कहानी पढ़ने के लिए आप bbchindi.com पन्ने पर आ सकते हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब कार्यक्रम में वक्त है जानने की अखबारों की सुर्खियां। दिलनवाज पाशा अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं। दिलनवाज, 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे, मौसम सर्द, क्या कहते हैं अखबार?
जी, आज के अखबारों में इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो उर्जित पटेल के इस्तीफे की है। सभी अखबारों के पहले पन्ने पर यही खबर है। और पंजाब केसरी ने लिखा है, सरकार से तनातनी के बीच RBI गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा। तो वहीं हिंदुस्तान ने बताया है कि उर्जित पटेल ने इस्तीफे के पीछे निजी वजहों का हवाला दिया, स्वायत्तता के मुद्दे पर सरकार से था टकराव। जी, इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है वो है विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रितानी अदालत की मंजूरी। ये खबर भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। कल एडिलेड में हुए पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तस्वीरों के साथ ये खबर भी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। और जिक्र करेंगे बुलंदशहर हिंसा से जुड़ी एक खबर का। दैनिक जागरण ये दावा कर रहा है कि इंस्पेक्टर को गोली मारने वाले युवक का वीडियो सामने आ गया है और ये जिस युवक है ये चिंगराफ्टी गांव का ही है, महाव गांव का फौजी जीतू नहीं है। इसके अलावा यानी जीतू फौजी को
जिनको कल कल या परसों
पुलिस ने डिटेन किया था, सेना ने पुलिस के हवाले किया था और कल उन्हें जो है अदालत से जेल भेज दिया गया था
और उनसे पूछताछ करने की खबरें भी कल आ रही थी।
जी बिल्कुल, तो अब ये एक अलग चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और जिसमें बताया गया है कि गोली मारने वाला युवक कोई और है और उसका नाम FIR में भी नहीं है, वीडियो से ये बात सामने आई है। जिक्र दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक प्याज का सही दाम नहीं मिला तो नासिक के किसान ने प्रधानमंत्री को मनी ऑर्डर किया। और इसमें दिलचस्प बात किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखा गया, मनी ऑर्डर नहीं ऑनलाइन ट्रांसफर करें, अब किसान बहुत आहत है। उसको लगा था कि जो मुद्दा है प्याज के दामों का वो उठेगा, सरकार उसको समझेगी और सरकार ने तो बदले में जो है मनी ऑनलाइन पैसे मांगे।
महाराष्ट्र के नासिक में इस बार मसला ये है कि प्याज की जो उत्पादन हुआ है वो बंपर उत्पादन है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि
एक रुपए किलो से कम पर। मयूर विहार के जिस इलाके में मैं और आप रहते हैं उससे जुड़ी एक खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर छपी है और जब मैंने ये पढ़ी तो एक सिरहंसी बदन में दौड़ गई। बाइक गाड़ी से टकराई, इस बात पर विवाद हुआ और कार वाले ने उतरकर युवक को गोलियां मार दी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये उस बाजार में हुआ है जिससे हम रोज गुजरते हैं, तो दिल्ली में घर के बिल्कुल पास इस तरीके की घटना होना थोड़ा डर पैदा करता है।
जी बिल्कुल। और अब मैं इरफान का कार्टून बता दूं अपने श्रोताओं को कि आज क्या है। आज उनका कार्टून है एग्जिट पोल पर, और जो एक अखबार पढ़ रहा है एक आदमी, लिखा हुआ है उसमें एग्जिट पोल और ऊपर लिखा हुआ है एग्जिट पोल तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो आज रिलीज होगी।
जी बिल्कुल। और एनआरसी से जुड़ी खबर एक द हिंदू ने आज पहले पन्ने पर प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक असम ने एक महीने का समय मांगा है एनआरसी की जो तिथि है डेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री थे, कल उन्होंने इस्तीफा दिया, ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। और विपक्षी 21 विपक्षी दलों ने कल मुलाकात की थी, सबकी तस्वीर आई है, उसमें दो तस्वीरें गायब हैं, मायावती जी और अखिलेश जी, दोनों पार्टियां जो है इस मुलाकात में शामिल नहीं हुई। और ये भी
और इस कारण ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या वो महागठबंधन में शामिल होंगी।
जी ये सवाल उठने लगा है। बिल्कुल
जी। धन्यवाद दिलनवाज पाशा अखबारों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए। और कार्यक्रम के आखिर में अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप से। आज यानी 11 दिसंबर को मुकाबला होगा बेल्जियम का पाकिस्तान के साथ और नेदरलैंड्स का कनाडा के साथ। भारत के भुवनेश्वर में चल रहे वर्ल्ड कप में कल से शुरू होंगे क्वार्टर फाइनल्स। भारतीय मेंस हॉकी टीम पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल्स तक। भारत का अगला मुकाबला अब होगा 13 दिसंबर को। इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना है फॉर्मर ओलंपियन और इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके जफर इकबाल का, आइए जानें।
बहुत अच्छा यानी टूर्नामेंट चल रहा है, पर यानी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं वर्ल्ड कप के, इतना बड़े स्केल पे और अच्छी सुविधाएं फैसिलिटीज, यानी दुनिया के लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतना अच्छा वर्ल्ड कप उड़ीसा में कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ।
तो ये थी बात हॉकी वर्ल्ड कप की, अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट मैच हुआ एडिलेड में, उसमें भारत ने 31 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इस सीरीज में लीड लेकर भारत ने इतिहास रचा है, 10 साल में पहली बार ऐसी जीत दर्ज की है। मैन ऑफ द मैच रहे चेतेश्वर पुजारा। इसमें अहम रोल है विराट कोहली का, ऐसा कहना है वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली का।
इसका श्रेय मैं विराट को इसलिए भी दूंगा कि वो खुद परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस निकालते हैं, अपने प्लेयर्स के साथ खड़े रहते हैं और मीडिया भी उनको बहुत कुछ बोलता है पर वो अपना संयम रख के उन्होंने इस मैच में भी अच्छी कप्तानी की है।
और जाने से पहले बात फुटबॉल की। आज चैंपियंस लीग में मुकाबला होगा बार्सिलोना का टॉटनहैम हॉटस्पर के साथ, लिवरपूल का नेपोली के साथ और रेड स्टार बेलग्रेड का पेरिस सेंट जर्मेन के साथ। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
भारत के 5 प्रांतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। आप फ्रांस में महंगाई को लेकर कई सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के जवाब में राष्ट्रपति मैक्रों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने और कई तरह की टैक्स छूट देने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक पर कब्जा करने वाले बंदूकधारियों से कहा है कि वो ये इलाका छोड़ दें। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क ने इस सप्ताह ब्राजील्स में होने वाले यूरोपीय सम्मेलन में ब्रेग्जिट पर चर्चा के लिए भी एक सत्र जोड़ दिया है। अमेरिका की टायर बनाने वाली कंपनी गुडियर वेनेजुएला में अपना उत्पादन बंद करने जा रही है। और पेरू में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर हुए जनमत संग्रह में 80% से अधिक लोगों ने राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा के सुधारों के समर्थन में मतदान किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।